मेरे अत्यंत आत्मीय नौजवान साथियों, नमस्कार। AFEIS के आज 4 जनवरी 2021 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं, और आप सबके साथ ही विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 5 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 7 से 21 मार्च के बीच होने वाले क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन नौजवान साथियों के नाम हैं राहुल सैनी भरतपुर राजस्थान से, आदर्श कुमार विद्यार्थी पटना बिहार से, अंश सविता कानपुर उत्तर प्रदेश से, जितेंद्र कुमार पसिया बिहार से और सुरेंद्र ढोलीवाल झुंझुनू राजस्थान से। दोस्तों, 2021 में आज मेरी आप सबसे यह पहली मुलाकात है। बहुत सी बातें आप अखबारों में पढ़ रहे हैं, चैनल्स पर भी सुन रहे हैं, नारों के रूप में, आदर्श वाक्यों के रूप में, कथा कहानियों के रूप में, और वो सब सही भी हैं, सारी बातें सही हैं। लेकिन हमारे लिए वही बातें सही हो पाती हैं जिन्हें हम आत्मसात कर पाते हैं। मैं जानबूझकर इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, आत्मसात कर पाते हैं। विचारों के स्तर पर इस तरह की बातें हम पढ़ते हैं, वो बातें थोड़ी समय के लिए दिमाग में दर्ज हो जाती हैं और इसके बाद फिर गायब हो जाती हैं। थोड़े समय के लिए तो उनका असर होता है जब तक कि वो हमारे विचारों में होती हैं, और इसके बाद पता लगता है कि हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती हैं। सच पूछिए तो हमें याद भी नहीं रह पाती कि हाँ, हमने ऐसा कभी कुछ पढ़ा था और पढ़ने के बाद हमने ऐसा सोचा भी था। तो दोस्तों, नए वर्ष में मैं चाहूंगा कि चूंकि आप सब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि नौकरी पाने के लिए प्रतियोगी तैयारी से जूझ रहे हैं, मैं जूझने शब्द का ही इस्तेमाल कर रहा हूं, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप इस नए वर्ष में एक अपने लिए अनुशासन का चार्ट बनाए। मैं टाइम टेबल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डिसिप्लिन चार्ट की बात कर रहा हूं। चाहे तो आप इसे टाइम टेबल कह सकते हैं, लेकिन जो डिसिप्लिन है वो टाइम टेबल से भी ज्यादा बड़ा है। टाइम टेबल की जब हम बात करते हैं तो उसमें समय और इसी समय पर मैं ये काम करूंगा, इसकी बात होती है। लेकिन जो डिसिप्लिन चार्ट होता है उसमें केवल समय की ही बात नहीं होती, हमारी आदतों की भी बातें होती हैं, हमारे सोचने के तौर तरीके की भी बातें होती हैं, हम दूसरों से कैसा व्यवहार करेंगे उसकी भी बात होती है। डिसिप्लिन इसे ही कहते हैं, हर मामले में डिसिप्लिन। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स कि आप सबको, जब तक आप अपने इस उद्देश्य में सफल नहीं हो जाते, एक डिसिप्लिन चार्ट बनाकर पूरे डिसिप्लिन के साथ उसका पालन करना चाहिए। हालांकि मैं अभी जिस विषय पर बात कर रहा हूं, यह विषय लाइफ मैनेजमेंट के लिए ज्यादा सटीक विषय है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जो लाइफ मैनेजमेंट न सुनते हों, तो कम से कम नए वर्ष पर अपने मन की यह बात तो मैं आप सब तक पहुंचा ही दूं। तो दोस्तों, आइए अब अपने मुख्य मुद्दे पर आते हैं, और मुख्य मुद्दे के तहत आज जो एक टॉपिक आपको पढ़ने को मिला होगा अखबारों में, वह छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, और वो कुल मिलाकर के ये है। उस पर मैं बहुत ज्यादा विस्तार से बात नहीं करने जा रहा हूं कि जो अमेरिका है, अमेरिका की संसद ने 2 दिनों पहले एक चीन की नीति से संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया है, आप कह लीजिए एक बिल पारित किया है, जिसमें वो चीन की नीतियों के बारे में आगे क्या करेगा इसका जिक्र है। यहां मैं 2 बातें आपसे विशेष रूप से कहने जा रहा हूं। पहली बात तो यह है कि आपको मालूम होना चाहिए कि भारत और चीन के जो संबंध हैं फिलहाल जो हैं वो तो हैं ही, लेकिन चूंकि चीन हमारे पड़ोसी देश है, इसके नाते सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो प्रस्ताव पर जो बिल पारित हुआ है वो अमेरिका ने पारित किया है, लेकिन भारत से भी उसका संबंध है। भारत से उसका क्या संबंध है? जो बिल पारित किया गया है उसमें इस बात का प्रोविजन है कि बकायदे जो तिब्बत है, जो आप तिब्बत की जो निर्वासित सरकार है वो भारत में रह रही है। आपको मालूम होगा धर्मशाला में जो दलाई लामा साहब हैं वो धर्मशाला में रह रहे हैं, उनके धार्मिक गुरु हैं। और सच पूछे तो जब दलाई लामा जी तिब्बत छोड़ करके अचानक भारत आए थे, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो समय प्रधानमंत्री थे उन्हें यहां शरण दी गई। उसके बाद से ही भारत और चीन के जो संबंध हैं वो थोड़े से तनावपूर्ण होने लगे, क्योंकि चीन ने इसे कहीं ना कहीं एक हस्तक्षेप माना कि भैया तिब्बत हमारा क्षेत्र है और वहां किसी एक व्यक्ति धार्मिक गुरु भाग करके भारत गया और भारत उसे अपना शरण दे रहा है। खैर चलिए, उसके बाद से भारत और आप यूं कह लीजिए कि चीन के संबंध लगभग खराब ही होते चले गए। कहां तक पहुंच गए हैं आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब आप देखिए कि दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात तो यह कि चीन लगातार विस्तारवादी नीति अपना करके चल रहा है, किस तरीके से अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड वार शुरू हो गया है। दूसरी बात है कि कोरोना के संकट के समय आप देख रहे हैं कि चीन, आप यूं कह लीजिए कि उसकी जो छवि है वो काफी धूमिल हुई है। कोरोना की शुरुआत वहां से हुई, इस पर आक्षेप लगाया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर उसका दबाव है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पर उसका दबाव है, यह आरोप लगा और पूरी दुनिया एक प्रकार से चीन को कहीं ना कहीं शक की निगाह से देखने लगी, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ऐसी स्थिति में अगर अमेरिका की संसद यह नीति पारित करती है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि इससे जो चीन की विस्तारवादी नीति है उस पर थोड़ी सी रोक लगे और चीन का भारत के प्रति जो इतना एक शत्रुतापूर्ण ही कह लीजिए जो रुख उसने अपना रखा है वह भी थोड़ा सा नम्र हो। और एक सूचना कुल मिलाकर के अभी यह है कि जो यहाँ धर्मशाला में जो तिब्बत की जो निर्वासित सरकार है उसने अपनी संसद बाकायदे बना रखी है, उसके चुनाव होते हैं, उसके चुनाव होने जा रहे हैं और उसमें बाकायदे विश्व के प्रेक्षक आएंगे उस चुनाव में। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। आपके लिए जो एक लाइन की जो महत्वपूर्ण सूचना है, जो घटना है वो ये है कि चीन की आपके लिए जो एक महत्वपूर्ण सूचना है वह यह कि अमेरिका के संसद ने चीन के संबंध में अपनी नीति से जुड़ा हुआ बिल पारित कर दिया है। अगर बात और आगे बढ़ती है और इस पर अगर कुछ एडिटोरियल कमेंट्स वगैरह आते हैं तो उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत आज मैं आप सबसे जो पढ़ने का तरीका और जो आलोचनात्मक क्षमता होती है इस पर सीधे अब आ रहा हूं। हम लोग आलोचनात्मक क्षमता का विकास कैसे करें इस पर बातें कर रहे थे। फ्रेंड्स, इसके बारे में स्टूडेंट के दिमाग में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बहुत से डाउट्स हैं। उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे इसका कोई फार्मूला होगा, या जब आंसर राइटिंग की आप बात करते हैं तो उसमें भी लोगों को ऐसा महसूस होता है कि कोई सूत्र होगा, यदि वह सूत्र उनकी पकड़ में आ जाए तो वो आंसर राइटिंग कर लेंगे। और जो आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, वो आंसर राइटिंग का ही अपना एक शब्द है। तो ये आएगा कैसे? देखिए, जब भी हम क्षमता के विकास की बात करते हैं तो क्षमता का जो विकास होता है वो चौतरफा विकास होता है और ये बीज रूप से इसकी शुरुआत करनी पड़ती है। बीज रूप से, जो मैं कह रहा हूं बीज रूप से, तो यहां बीज क्या है? अब आप बताइए कि आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये तो उसका परिणाम है, आउटपुट है। आप आंसर राइटिंग करने के बाद तो बात खत्म हो गई। आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस की तैयारी करने में आप आंसर देते हैं, चाहे आप रिटन फॉर्म में दें या इंटरव्यू में आप बोल कर दें, वो आपका आंसर होता है। तो आंसर आपने दे दिया, खत्म हो गई आपकी बात। अब एग्जामिनर के ऊपर है कि वो इसके बारे में क्या निर्णय लेता है, वो इसका कैसे मूल्यांकन करता है। तो आपने जो आंसर दिया है इसका बीज कहां है, सीड कहां है, यानी कि आपके दिमाग में जो ये आंसर आया है ये कहां से पैदा हुआ है, इस पर आप थोड़ा सा सोचिए। जब आप गंभीरता से सोचेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो आंसर है ये पैदा हुआ है आपके पढ़ने से। आप बिना पढ़े कैसे आंसर देंगे, आप बताइए। सामान्य तरीके की जो आपने पढ़ाई की उसके तहत आप सामान्य प्रश्नों के आप आंसर दे देंगे, वो बात अलग है। लेकिन जो भी आप आंसर देते हैं एकेडमिक फील्ड में, तो उसके पीछे दो बातें होती हैं। पहली बात जो सबसे महत्वपूर्ण होती है वह होती है पढ़ाई। आप पढ़ाई करते हैं तभी आप आंसर दे पाते हैं, और जो पढ़ाई नहीं कर पाते वो आंसर नहीं दे पाते और इसीलिए परीक्षा में फेल हो जाते हैं। जो पढ़ लेते हैं और आंसर दे लेते हैं वो पास हो जाते हैं। लेकिन पास होने के भी तो लेवल हैं, सभी एक ही श्रेणी में पास नहीं होते, सभी को एक ही जैसे नंबर नहीं मिलते, वो डिफरेंट होते हैं। तो जो बीज रूप है आलोचनात्मक क्षमता का, याद रखिए वह है आपका अध्ययन, यानी कि पढ़ने का तरीका, कि आप पढ़ते कैसे हैं? जब तक आपके पढ़ने का तरीका आलोचनात्मक नहीं होगा, तब तक आपके उत्तर देने का रूप आलोचनात्मक नहीं हो सकता है। इसे चाहे आप स्वीकार करें या स्वीकार न करें। मैंने कहा पढ़ने का तरीका आलोचनात्मक, इसके दो रूप हैं। पहला यह है कि आप पढ़ रहे हैं लेकिन उसे समझ भी रहे हैं, यह इसका पहला रूप है पढ़ने का। दूसरा जो रूप है इसी का, वो यह है कि जब आप पढ़े हुए को समझ गए हैं तो समझने के बाद उस पर थोड़ा सा विचार भी कीजिए। अब आप देखिए कि जो किताबों में बातें लिखी गई हैं उसने आपको एक मंच भर उपलब्ध कराया है, और स्पेशली अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहां तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो एक केवल मंच है, वो फोरम है, उस मंच पर अब आप खड़े होकर के उसे समझिए। और बात केवल समझने तक सीमित नहीं है, समझने के बाद उस पर विचार कीजिए। तो जो आपकी समझ है ये प्री में आपको सफलता दिलाएगी, और जो आपने उस पर विचार किया है वह आपको मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में सफलता दिलाएगी। तब जाकर के आपके सही मायने में आलोचनात्मक क्षमता विकसित हो सकेगी। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि मैंने आप सबसे अनुरोध किया था कि यूट्यूब पर जो मेरा एक लेक्चर है महासागरीय जल की लवणता के बारे में, प्लीज आप उसे पढ़ें, उसे सुने। पढ़ें का मतलब है कि आप बकायदे किताब में जाकर के उस चैप्टर को पढ़ें, और यूट्यूब पर जो प्रोग्राम है आप उसे सुने, और इसके बाद फिर जो अंतर आप महसूस कर रहे हो उसके बारे में मुझे बताएं। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बताया भी है, नहीं भी बताया तो कोई बात नहीं, आप खुद का मूल्यांकन कीजिए कि क्या सच में यदि आप इस तरह के लेक्चर सुनते हैं या इस तरीके से पढ़ते हैं तो आपकी आलोचनात्मक दृष्टि विकसित होती है, और यदि नहीं होती है तो फिर मान करके चलिए कि जो लेक्चर आप सुन रहे हैं शायद वह लेक्चर सही नहीं है, या आपकी जरूरत के हिसाब से नहीं है, या यूं भी कह सकते हैं कि आप सही तरीके से लेक्चर नहीं सुन पा रहे हैं, उसे सही तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं। और यही बात किताब पर भी लागू होती है कि जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं शायद सही तरीके से वो चैप्टर लिखा नहीं गया है, या आपके हिसाब से नहीं लिखा गया है, या आप उसे सही तरीके से पढ़ नहीं पा रहे हैं, या उसे आप सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। यह मूल्यांकन तो दोस्तों आपको करते ही रहना चाहिए। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है वो मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं। रविंद्र गोस्वामी रामनगर बुजुर्ग मध्य प्रदेश से, सूरज कुमार सेमापुर बिहार से, बी एन तिवारी अयोध्या उत्तर प्रदेश से, रीपा दहिया, पूजा सिंह, रीना गिरी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, अमृत नारायण सतपति भुवनेश्वर ओडिशा से, शुभम कुमार, ज्योति झज्जर हरियाणा से, अतुल कुमार यादव और अंजलि सैनी, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।